सत्यार्थ प्रकाश अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में लाइट ऑफ ट्रूथ बुक है, स्वामी दयानंद जी का 7th चैप्टर की हम चर्चा कर रहे थे, आज 5वां भाग है। उससे पहले हमने ये चर्चाएं सुनी कि ईश्वर है या नहीं है, है तो कहां है, एक जगह है कि सब जगह है, ये भी चर्चाएं सुनी। ईश्वर एक है या बहुत है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल, डज इट लिव इन वन प्लेस और एवरीवेयर, इसका कोई रूप है या नहीं है, बहुत सारी तीन चार चीजों की चर्चाएं की। आज का जो चर्चा का विषय है प्रश्न, द क्वेश्चन, शुड वी वर्शिप गॉड, तो क्या हम ईश्वर की पूजा करें? पूजा का अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, भक्ति करें। भक्ति के तीन पार्ट होते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उसमें तीन इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं। एक होता है आप जो भी किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में, किसी भी रिचुअल के थ्रू करते हैं, उसमें ये तीन चीजें, तीन पार्ट्स जरूर होते हैं, जिसमें हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं ईश्वर की, उसके एप्रिसिएशन करते हैं। जब आप उसकी बड़ाई को बोलते हैं, नंबर दूसरे चीजें में जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं। तीसरा, जब हम उसके साथ मिलने के लिए, जोड़ने के लिए अंदर से बेताब होते हैं, तो उसे हम उपासना कहते हैं। तो पूजा का ये तीन रूप होता है, नोइंगली और अननोइंगली, समझ के या ना समझ के, हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर से रिलेटेड, उसमें ये तीन चीजें जरूर पार्ट रहते हैं। तो पूजा करनी या भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोले यस, वन शुड डू, जरूर करनी चाहिए। तो अगर करें तो क्या हम जो पूजा करते हैं, जो भक्ति, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, जो भी स्मरण, जो भी करते हैं, क्या उससे ईश्वर अपना जो इटर्नल लॉ है, जो संसार का जो नियम है, जो सिस्टम है, उसको इग्नोर करके जो भक्त का या जो पूजक की जो भी पाप हैं, उसको सब पाप से हटा देता है, उसकी बुराइयों को नष्ट कर देता है, जो अच्छाइयां, जो अच्छी चीजें हैं, जो दुनिया में मिलना चाहिए, वो सब उसको दे देता है? बोले नो, ईश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए, पर इसका अर्थ नहीं है कि ईश्वर उस पूजा के कारण या भक्ति के कारण जो यूनिवर्सल लॉज है, रूल्स है, उसको तोड़ के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्त के ऊपर कृपा करने लगे। पहले भी इसके ऊपर हमने काफी चर्चाएं की हैं, ईश्वर अगर ऐसा करता तो कुछ तो हमें दिखता भी है ना, एक तो प्रैक्टिकली भी दिखता नहीं है दुनिया में कि जो पूजा पाठ में लगा रहता है, भजन कीर्तन में लगा रहता है, वो ज्यादा सुखी है अंदर से या बाहर से, कहीं से भी वो ज्यादा उसके अंदर सुकून है, ज्यादा शांति है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके दुख कम है, उसको सोसाइटी में बा उसके लाइफ में उसको कम परेशानियां होती है, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनकी परेशानियां ज्यादा होती हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता। इवन जो ईश्वर को नहीं मानते, और दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो भगवान को मानता ही नहीं, उनके जीवन में भी वैसे ही कठिनाइयां होती है जैसे जो आम जो पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उसकी लाइफ में भी वही, उसके घर में भी उतनी ही लड़ाइयां होती है जिसकी इतने घर में, उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं जैसे इनके बच्चे, उनको भी बीमारियां होती है, इनको भी बीमारियां होती है, उनके भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, इनका भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, कोई इंसिडेंटली किसी के लाइफ में कुछ हो जाए और वो चिल्लाने लगे कि देखो मैंने प्रार्थना की इसीलिए मुझे ये मिला, दैट्स ए कोइंसिडेंट। वो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम है, ये तो फैक्चुअल है, दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर ईश्वर ऐसा करने लगे तो सिस्टम तो सारा गड़बड़ा जाएगा। मतलब मुझे आप बच्चे को अब स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, आठ आठ दस दस घंटे बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको बोलो रोज एक दो घंटे भजन कीर्तन करे तो हो गया। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, भजन कीर्तन करे हो गया। कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, भजन कीर्तन करे हो गया। रोड बनाने की जरूरत नहीं है, सारे कंट्रैक्टर इंजीनियर काम करने वाले बैठ जाए, भाई आज से रोड बनानी है, चार पांच दिन तक हवन कीर्तन करे, रोड अपने आप बन जाना चाहिए। पर ऐसा कभी दिखता नहीं है ना, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। दूसरा बड़ा अन्याय होगा अगर ऐसा होने लगे कि कोई ईश्वर की पूजा करता है, इसलिए ईश्वर ने सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं यूनिवर्सल सिस्टम में, उसको दरकिनार करके उसको खास तरह के कुछ प्रिविलेज देने लगे, तो ये अनजस्टिस होने लगेगा कि जो जैसा काम करता है उसको वैसा फल मिलना चाहिए। अच्छा काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरे करने को बुरा मिलता है। बुरा कर काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा भजन कीर्तन में रहता है, इसलिए उसके सारे पाप माफ। अच्छे करने वाला मान लीजिए ज्यादा मंदिर नहीं जाता, ज्यादा भक्ति उपासना नहीं करता है, तो वो नर्क जाएगा। तो ये तो अनजस्टिस होगा ना, पाप होगा। इसीलिए ईश्वर आपकी भक्ति के बदले में कुछ नहीं करता है, वो जो करता है वो यूनिवर्सली करता है, वो इटर्नली करता है। वो इसीलिए नहीं करता है कि आप पूछते हैं, इसीलिए वो आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिफिक डिमांड आपका पूरा करने वाला। फिर नेचुरली अगला सवाल सबका यही होता है जो बुक में भी पूछा, तो फिर पूछे ही क्यों? मैं वैसे ही नॉर्मली आपसे नीचे आकर बात करूं तो भी आप यही सवाल पूछते तो फिर पूछने का क्या मतलब है? तो वो भी यहीं पर बुक में भी पूछा, देन व्हाई शुड वी देन वर्शिप गॉड? Its object is altogether different from the one you mention. भक्ति का, पूजा का, उपासना का, जो भी भगवान से संबंधित इंसान करता है उसका अपना फल है। वो फल क्या है? What is it? जो भक्ति के जो तीन पाठ हैं, स्तुति मतलब glorification, प्रार्थना मतलब prayer, कुछ मांगना, और उपासना कम्युनियन बा रियलाइजेशन, ईश्वर को अपने अंदर अपने नजदीक एहसास करना पाना, उसको अनुभव करना अपने अंदर, ये उपासना है। ग्लोरिफिकेशन जो स्तुति, इट क्रिएट्स लव फॉर गॉड। पहली बात है कि जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, जिसमें आप उसकी बड़ाइयां करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उससे प्रेम बढ़ता है हमारे अंदर। जो भी हम भक्ति या पूजा करते हैं वो हमारे अंदर में परिवर्तन लाता है, हमें ऐसा लायक बनाता है कि हमारे बिगड़े हुए काम भी हमारे से ठीक हो जाए। ईश्वर आने की जरूरत नहीं पड़ता, आपकी भक्ति में वो ताकत है कि वो आपको रिफॉर्म कर सकता है, आपको चेंज कर सकता है। पर वो भक्ति की ताकत तभी होगी जब आप सचमुच भक्ति हम करें। अगर हम भक्ति के नाम पर ड्रामा करते हैं फिर तो जिंदगी भर ड्रामा ही रहेगा। तो अगर सचमुच आप रियल लाइफ में भी किसी के अप्रिशिएशन करते, अप्रिशिएट करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, मतलब झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जहां भी जो भी मिल गया बस आप शुरू हो गए दो चार पांच बिल्कुल लतीफे पढ़ने, आप तो महान हो, आप तो ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आदमी समझता है, बुद्धू आदमी भी समझता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है प्रशंसा के नाम। ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति, वैसे बड़े कम ऐसे मूर्ख लोग होंगे जिनके पास वो क्वालिटी नहीं है और कोई उनको तारीफ करता है उस क्वालिटी के लिए और वो अंदर अंदर खुश हो रहा है, ऐसे तो कम लोग मिलेंगे और जो मिलेंगे वो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति होते हैं। पर हमारे आजकल आदत पड़ी हुई है, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे हिस्से में हिपोक्रेसी बहुत है, इसी तरह तारीफ करने में भी वही है कि बिना मतलब के आदमी में वो गुण नहीं है तो भी हम इतने ज्यादा तारीफ कर देते हैं। मान लीजिए उसने थोड़ा सा अच्छा हेल्प कर दिया तो उसको इतना तारीफ कर देते हैं कि बस तू भगवान के नीचे, बस तुम ही हो भगवान के ऊपर। वो समझता है ऐसा कुछ नहीं किया, विपत्ति में थोड़ी सी हेल्प कर दी, तुम भी कभी मेरा कर लोगे, इतनी बड़ी तारीफ की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो दिल से निकलता है, पर मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम उसको नकली करते हैं तो वो तो कोई फायदा नहीं होता है। पर अगर सचमुच जेन्युइन हम किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, गुणगान करना, जिसमें जो अच्छाइयां है उसको बताना, जो उसकी अच्छाइयां जो सच्ची है जो रियल है उसको बताना, यही ये तारीफ है, यही गुणगान है, इसी को स्तुति कहते हैं। आप जिसकी स्तुति करते हो रियल लाइफ में भी, वो आपके घर में आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी पति पत्नी हो, या आपके फ्रेंड हो, या ऑफिस हो, कहीं भी, वो आदमी खुश होता है। वो खुश हो ना हो, अगर आप बार बार तारीफ करते हैं, अब अगर ये दिल से निकलता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें वो व्यक्ति हमें नहीं जानता, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते, पर हम उनके फैन हैं, हम उनको पसंद करते हैं, हम उनका फोटो घर में लगाते हैं, उनके बारे में हम बहस करते हैं, कहीं पार्टी में बैठे हैं अगर बात छिड़ गई, किसी ने उसकी बुराई कर दी तो फिर हम संभल नहीं पाते हैं, हम लड़ने तो चल आ जाते हैं। जैसे आपके यहां टेक्सास में बहुत सारे फुटबॉल के शौकीन है या और भी बहुत सारे खेल के शौकीन है, तो आपकी कोई मनपसंद पार्टी होगी, कोई खिलाड़ी होगा, कोई टीम होगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल दीवाने हैं, और अगर कोई बात छिड़ जाती है उसके खिलाफ कोई बोलता है तो आप लड़ने को तैयार हो, उसकी तारीफ सुनने मिल जाती है तो बिल्कुल आप खिल जाते हो। आपका उससे क्या मतलब है उस टीम के साथ, क्योंकि आप उस अपने अंदर, आपके अंदर प्यार आ चुका है। इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, तो जब हम दूसरे के किसी की तारीफ करते हैं, जेन्युइन ग्लोरीफाई करते हैं, तो हमारे अंदर हमारे अनजाने में प्यार आने लग जाता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, सचमुच करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे दादा परदादा से करते आ रहे हैं इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं, मतलब उसलिए कर रहे हैं, तो वो तो कोई फायदा नहीं, वो तो मैकेनिकल होता जा रहा है। इसीलिए नहीं कि आपको किसी ने बताया कि भाई पूजा करनी चाहिए, इसीलिए नहीं कि आप किसी से इंस्पायर्ड हुए तो आप इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। अगर जेन्युइन आप सचमुच ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और वो आपका दिल से निकल रहा है, तो और आप जितने जोर जोर से जितने ज्यादा उसकी तारीफें करेंगे, गुणगान करेंगे, उतना आपके अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा। नंबर टू, and helps a man to reform his nature, character and attributes in accordance with the nature, attributes and character of God. जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी तारीफें आप करते हैं, वो खिलाड़ी हो, वो पॉलिटिकल लीडर हो, वो कोई मूवी स्टार हो, वो कोई रॉक स्टार हो, कोई भी हो, या आपके कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई साधु हो, सन्यासी हो, या आपके अपने दादा दादी या मां बाप कोई भी हो, मामा मामी, जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, जो आपके लिए आइडियल है, होता क्या है, हम उसकी तारीफें तो करते हैं, ग्रेजुअली हमारे अंदर वो इमोशंस पैदा होते हैं कि मैं भी उसी तरह का हूं बा बनूं। जैसे भारत में जो क्रिकेट खिलाड़ियों के लोग दीवाने होते हैं, या बॉलीवुड स्टार्स के दीवाने होते हैं, पर ऐसे होते हैं कि वो बॉलीवुड का कोई हीरो अगर शादी कर ले तो पता लगता है अगले दिन अखबार में कितने लड़कियों ने सुइसाइड कर दिया, वो कर दिया, कोई लड़की शादी कर ले तो, जबकि क्या मतलब है, वो किसी गांव में रहता है, वो लड़का या लड़की पागलपन की सवाद चढ़ा रहता है, घर में फोटो रखते हैं, अब यहां भी मुझे यहां का ज्यादा पता नहीं, इसीलिए मैं वहीं के एग्जांपल देता हूं। यहां के बच्चे किस किस के फैन होते हैं, घर में फोटो रखते हैं अपने, पर्स के अंदर बैलेट के अंदर मिलेगा है? उसी तरह के बाल करेंगे, उसी तरह के कपड़े पहनेंगे, उसी तरह के बोल बोलेंगे। ये क्या चीज है? उसी की तरह बनने की कोशिश करना, जो स्पिरिचुअल है, जो जो थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में है। मान लीजिए बच्चे ऐसा करते हैं, अगर महात्माओं में से कोई आध्यात्मिक है, वो किसी स्वामी विवेकानंद के, स्वामी दयानंद के, शंकराचार्य के, बस जो भी जिसको मानते हैं उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसी की तरह पगड़ी बांधते हैं, उसकी तरह बोल बोलते हैं, उसी की तरह बातें करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, बा किसी की ग्लोरीफाई करते हैं, इनडायरेक्टली हमारे अंदर ऐसा माहौल बनता है कि हम उसी के कैरेक्टर को, उसी की जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वो उसी के तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। हम बन पाते हैं कि नहीं बन पाते वो दूसरी बात है। हम हो सकता है कि हम उसी के तरह नहीं बन पाते, पर हम अपने लेवल में बनने की कोशिश करते हैं। ये स्तुति का, ग्लोरिफिकेशन व अप्रिसिएशन का एक एक रियल इंप्लीमेंटेशन, जो फायदा होता है। इसी तरह जब ईश्वर के प्रति व्यक्ति सचमुच दिल से भक्ति करता है, उसका गुणगान करता है, तो उसके दिल में भी एक तो प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता है, दूसरा वो उसी की तरह होने की कोशिश करता है। और जो प्रार्थना है वो व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी लाता है, विनम्रता लाता है, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना। आप जब किसी से मांगते हैं, जब तक अपने आप को आप छोटा ना करें, अपने आप को छोटा ना समझें, तब तक आप किसी से मांग नहीं सकते। ये जो अपने आप को दूसरे से छोटा समझना, ये आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी लाता है, वो विनम्रता लाती है। और खाली इतना नहीं है, जब आप एक परमात्मा को, इतने बड़े सारे संसार के स्वामी को अपने अंदर पाते हो, तो आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत आता है, मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी आपके अंदर एक प्रेरणा आती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे पीछे कोई सपोर्टर है, मेरे पास कोई सपोर्टर है, उसका सपोर्ट मुझे मिलेगा। और यहीं से आशा बनती है, होपफुलनेस जिसको आप कहते हैं। जो रियल, जो सचमुच ईश्वर को भक्ति करता है, वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। वो कितने भी दुख में हो, परेशानी में हो, क्यों? उसके अंदर हमेशा ये एहसास है कि समवन इज इनसाइड मी और समवन इज विथ मी विल हेल्प, जो मुझे शंक। ये डिप्रेशन का मतलब होता है जब मैं असहाय महसूस करता हूं, जब मैं होपलेस हो जाता हूं, मुझे अब कुछ दिखता नहीं है, तब होता है। पर भक्ति से व्यक्ति के अंदर वो करेज और वो होपफुलनेस पैदा होता है, और उपासना ईश्वर के साथ हमें जोड़ता है और उसको अनुभव करने का रास्ता खोलता है। तो थोड़ा बताए, विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल, थोड़े से डिटेल में समझने की, समझाने की स्वामी जी कोशिश करते हैं। ग्लोरिफिकेशन इज अ टू काइंड्स, दो तरह की स्तुति है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन कितना सही है पता नहीं, पर हमारे यहां कहते हैं सगुण और निर्गुण। ईश्वर की दो तरह के हम स्तुति करते हैं। सगुण का मतलब होता है जब हम उसकी भक्ति करते हैं उसके गुणों को वर्णन करते हुए, जो उसके पास जो क्वालिटीज हैं उसको बताते हुए जब हम उसके भजन करते हैं, जब उसका गुणगान करते हैं, वो सगुण उपासना है। निर्गुण, जो उसमें जो क्वालिटीज नहीं है वो बता करके भी हम उसके भजन कीर्तन करते हैं। तो पॉजिटिव ग्लोरिफिकेशन सगुण स्तुति या सगुण स्तुति, भक्ति का एक पार्ट जो स्तुति है, वो क्या है? कंसिस्ट ऑफ कंटेम्पलेशन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स विच गॉड हैज। जैसे एक दो उदाहरण देखिए, ये वेद का एक मंत्र है, हमने पहले भी ईशावास्य उपनिषद में और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वैसे हजारों मंत्र होंगे पर एक मंत्र जस्ट आपके कि सगुण स्तुति कैसी होती है। सपरीयगा चक्रमकायम अब्रणमश्नावीरम शुद्धम पापविद्धम कवीर मनीषी परिभो स्वयंभूर
यथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्य समाभ्य।
जब आप उसकी क्वालिटीज को बखान करते हो, बताते हो कि वो सर्वव्यापक है, वो शुद्ध है, वो अनंत है, वो पवित्र है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वो सबके अंदर रहता है, सबके बाहर रहता है, और वो सबके अंदर बाहर के अलावा भी ट्रांसेंडेंट है, वो सबके अंतर्यामी है, सबके मन को समझता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो प्योर है, परफेक्ट है, वो स्वयंभू है। ये सब क्या है? आप इसके गुणों को बता रहे हैं, गुणों की तारीफ कर रहे हैं। नेगेटिव ग्लोरिफिकेशन जो उसमें नहीं है आप उसको बता रहे हैं। कुछ चीजें नहीं होना भी तो तारीफ है। जब आप बताते हो कि मेरा बच्चा बहुत लेजी नहीं है, बहुत एक्टिव है, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो, ये नेगेटिव ग्लोरिफिकेशन है। पर वो नेगेटिविटी उसकी तारीफ के लिए होता है। जब आप कहते हो मेरा बच्चा ज्यादा सोता नहीं है, बहुत पढ़ाई करता है, ज्यादा सोता नहीं है, ज्यादा टीवी नहीं देखता, तो आप उसकी तारीफ में कर रहे हो। इस तरह ईश्वर के कुछ ऐसी भी अप्रिशिएशन है जो उसमें नहीं है। जैसे इसी मंत्र का कुछ पाठ है, इसी सपर्यगात शुक्र का, इज नेवर एम्बॉडीड, सपर्यगात शुक्र अकायम, वो शरीर रहित है, इज नेवर बर्न, अज है, इज नेवर लाइबल टू डिविजन, अविभक्त है, इज फ्री फ्रॉम नर्व्स, स्नायु है, उसमें कोई स्नायु नहीं है, नर्व्स या अटेरियल सिस्टम्स नहीं है, अपाप विद्धम, उसमें किसी तरह का पाप पुण्य से ऊपर है, वो किसी तरह के सुख दुख से ऊपर है, तो ये सब चीजें उसमें नहीं है। ये निर्गुणता का, निर्गुण भक्ति का परिचायक है। तो जब आप उसकी स्तुति करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन इज टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज, जैसे अभी बताया। जब आप तारीफें करते हो, अगर आप जेन्युइन करते हो, इसीलिए नहीं कि वेद मंत्र में लिखा है इसीलिए आप पढ़ गए, अगर ये आपको दिल से यही चीजें निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वो अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लगता है, हम उसको अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे मूवी हीरो के तरह, या अगर वो कोई साइंस के फील्ड में जाता है तो वो देखता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ता है, उनके तरह कपड़े पहनता है, उनके तरह बिहेव करता है। ये जो सोशल वर्कर होते हैं, मैं दिल्ली में था, दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस एरिया, तो जितने ये जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वहां ड्रामा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां डांस सेंटर है, वो तो आप वहां चले जाएंगे, वो आपको पता लग जाए कि ये थोड़ा दिल्ली से हटके एरिया है। वहां ज्यादातर लोग क्या करते हुए मिलेंगे, ये पैंट के ऊपर एक खदी का कुर्ता पहने होंगे, एक झोला लटकाया हुआ होगा, दाढ़ी फाड़ी बेतरतीब, वो शेविंग नहीं किया होगा, बाल से जो उसको कंघी नहीं किया होगा। अब क्या है कि ये जो लेफ्टिस्ट कंसेप्ट वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक तरह का बड़े बड़े जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो टीवी में डिबेट में आते हैं, वो इसी तरह का दिखते हैं कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं कि कंघी करने के लिए, हम इतना पढ़ाई लिखाई में बिजी रहते हैं। खैर ये नौटंकी है, ड्रामा है, बट दैट वे दे प्रेजेंट देयर सेल्फ, दाढ़ी छोड़ी हुई है, उधर उसमें कीड़े भी लगे होंगे, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, झोला लटका होगा, टू जस्ट शो दैट वी आर इंटेलेक्चुअल्स। अब जिसको इंटेलेक्चुअल बनने की बीमारी है, ख्वाब है वो, तो फिर वो ऐसे लोगों को जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, तो फिर वैसे ही कपड़े पहन के घूमते, वो इंटेलेक्चुअल बने ना बने पर उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो जो जिसकी हम तारीफ करते, जो हमारा आइडियल होता है, हम उसी की तरह कपड़े पहनने की भी कोशिश, उसी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। पर दोबारा कहूं, अगर वो जेन्युइन हो, तो ईश्वर की भक्ति अगर जेन्युइन होती है, फिर हम प्रेम तो होता ही है, उससे कुछ क्वालिटीज हम अपने अंदर भी लाने की कोशिश करते हैं। कैसे क्वालिटी? जैसे ही जस्ट, वो न्यायालु है, वो किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वो जो रूल है तो रूल है, तो हम भी उसी की तरह न्यायालु बने। वो दयालु है तो हम भी उसी की तरह दयालु बने। इफ ए मैन सिंग्स लाउडेशंस टू गॉड वेरी लाउडली लाइक ए कोर्ट फूल एंड डजंट रिफॉर्म हिज कंडक्ट, स्तुति इज मीनिंगलेस। और अगर ऐसा कुछ ना होकर, मतलब दिल में कहीं कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ रटी रटाई बातें सुनाते हैं, प्रार्थना भजन कीर्तन करते हैं, वो तो वैसे ही हैं जैसे ये आजकल नेताओं के वहां सब चमचे होते हैं। अब वो दल बदलते ही वो गालियां देने शुरू कर देंगे, जब तक वो पार्टी में है तब तक तारीफें करते रहेंगे। पहले जमाने में राजाओं के वहां एक खास कैटेगरी के लोग, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता था, उनको भांड कहते थे। उनका एक ही काम है, उसके लिए वो तनख्वाह मिलता था कि वो, उनके दिल में तो राजा को गाली देने को मन करता होगा क्योंकि राजा खड़ूश होगा तो भी बोलेंगे जी आप महान है, सुबह उठते ही वो उसके तारीफें करेंगे। अगर राज्य में प्रजा विद्रोह कर रहा है, रिवोल्यूशन चल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तारीफ करेंगे महाराज आप तो महान है, आपकी कृपा से इस राज्य में हर बच्चा बच्चा सुखी है, सब सुखी है, आप जैसा राजा मुश्किल है, क्या कपड़े आप चुनते हैं, कहां से ये बुद्धि लाते हैं आप, बड़ा मुश्किल है ऐसी बुद्धि ला पाना, आप ही हो जो आपके दिमाग में सूझता है। वो उसी के लिए उनको जमीन मिलता है, पैसा मिलता है, उनको भांड कहा करते थे। स्वामी जी कहते हैं जो लोग ईश्वर को बिना फीलिंग किए, मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं पूजा करते हैं अगर दिल में कोई भावना नहीं है, सिर्फ तोतों की तरह रटते हैं, उस भांड से ज्यादा बेहतर नहीं है हम, रियलिटी है, क्यों करें फिर। वो राजा के पास जो करता है उसको तो पैसा मिलता है, वो करता है, उसके दिल में राजा के लिए बहुत गुस्सा है, कोई प्यार नहीं है, तो जो दिल में नहीं है आप बोलते हो वो तो भांड ही करता है। तो इसीलिए ऐसी प्रार्थना वैसी भक्ति बेकार है अगर दिल में कहीं हलचल नहीं पैदा करता है। अगर करता है फिर ईश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपकी प्रार्थना आपकी स्तुति अपने आप आपको बदल डालेगी। अगली है प्रार्थना। प्रार्थना इज टू गॉड इज टू बी एड्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए थोड़ी बहुत प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना। एक दो एग्जांपल्स दिया स्वामी जी ने वेद के और दूसरे किताबों से। अब हवन के समय मंत्र पढ़ते हैं ना, प्रार्थना का मतलब मांगना। याम मेधाम देवगण पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु। ओ ग्लोरियस गॉड बी ग्रेसियस टू एंड अवर्स एट दिस वेरी इंस्टेंट विद दैट विजडम इज द लर्नर एंड योगीज प्रेफर। ओम अग्नि नयसु पथाराये अस्मान विश्वामि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे परमात्मन, हे भगवान, आप हमें अच्छे रास्ते पर धन और ऐश्वर्य की ओर ले चलो। पैसा तो हम भी कमा सकते हैं पर अच्छा बुरा हर तरह के रास्ते मिलते हैं और हमारा मन कमजोर होता है, तो आप हमें अच्छे रास्ते पर धन की ओर ले चलो, क्योंकि संसार का हर अच्छे बुरे चीजों को आप जानते हो। हमारे अंदर जो पाप है, जो बुराइयां है, जो गंदी भावना है, उसको दूर करने में हमें मदद करो, हम तुम्हारे प्रणाम करते हैं बार बार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे प्रभु, झूठ से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत्व की ओर ले चलो। ये जो प्रार्थना है, वैसे तो ज्यादातर हम रटी रटाई तोतों की तरह बोलते हैं, पर अगर किसी को जेन्यून अंदर से ये तड़प हो कि नहीं, मुझे लाइट अंधेरे से बाहर निकलना है, मुझे झूठ से सच की ओर जाना है, मुझे सही रास्ते पर चलना है, मुझे मेधा चाहिए, अगर सचमुच किसी के अंदर वो जेन्युइन भूख है, रियल वो थर्स्ट अंदर है, प्यास है, तो वो मांगना सचमुच सफल होता हो सकता है। फिर क्या खाली प्रार्थना से फल तो नहीं मिलने वाला ना, ईश्वर तो नहीं। आपको धनी बनने की इच्छा है, बहुत पैसा कमाने की, और अब धनी बनने के लिए आपको किसी बाबा ने टोटका बता दिया, जाओ किटकैट की चॉकलेट खाओ धनी बन जाओगे, दो हफ्ते तक किटकैट की चॉकलेट खाओ, त्र्यंबकम मंत्र तीन हफ्ते जपो, धनी बन जाओगे। तो आप यही करने लगे तो क्या बनेंगे? फिर चोरी करेंगे, धनी तो बनेंगे नहीं। आप खुद मेहनत करेंगे, जिसको तड़प होगा पैसा कमाने के लिए वो मेहनत करेगा। अमेरिका में लोग 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। हमारे यहां ये आयरिश क्लीनर आता है, वो मियां बीवी बच्चे सब आते हैं, रात को 12-1 बजे तक जाते हैं, कहते दिन में 4-5 जगह जाना होता है, सब करके यहां रात को 12-1 बजे तक फिनिश करके जाता है। तो बोला क्या करें, पैसा चाहिए, खर्च करना होता है तो कमाना तो पड़ता है, मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से आएगा। 12-8 अब वो अगर सब छोड़ छाड़ के भजन कीर्तन में लगे कि पैसा कमाना है, तो आपको पैसा चाहिए तो आप मेहनत करेंगे, आप अपनी बुद्धि को यूज करेंगे, शरीर को प्रयोग करेंगे, फिर आप प्रार्थना करेंगे। तो आप कहेंगे अगर मेहनत ही करना है तो प्रार्थना क्यों करो? उसे शक्ति मिलती है, करेज मिलता है। जब आप होपलेस हो जाते हैं तो होप मिलता है, जब आप वीक हो जाते हैं मेंटली तो आप स्ट्रांग बनते हैं, आप जब थके हारे होते हैं तो आपको एक रोशनी मिलती है। वो आपको वो जो इमोशनल सपोर्ट और कहीं से नहीं मिलता है, वो आपको ताकत देता है। इसीलिए हमारे वो नीति शास्त्र में आता है कि ईश्वर सिर्फ मेहनती लोगों के साथ देता है, आलसी लोगों के साथ तो मां बाप भी नहीं देते। और आपने देखा होगा ना, मां बाप अगर बच्चा बेटा हो गया 15-20-22 साल का हो गया, काम नहीं कर रहा है, घर में बैठा रहता है, तो वो उसको ताना मारते रहते हैं। मां बाप जो जिनके जिनके अंदर बिल्कुल निश्चल प्रेम है, जिस प्यार का कोई जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन है, उसके बावजूद भी वो ताना मारते रहते हैं, बैठे बैठे खाता रहता है, बुड्ढा हो गया 25 साल का हो गया, कुछ करता धरता नहीं है, तो भी नहीं सुनते। तो भगवान उससे थोड़े ही गया गुजरा है कि आप कुछ ना करें तो भी दे देगा, मां बाप भी नहीं देने वाले। तो उद्यमिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्यार करती है। नालायक आदमी तो वैसे ही कोई लड़की नहीं पसंद करने वाली, तो लक्ष्मी कहां से पसंद कर जाएगी। तो ए मैन शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट ही प्रेज फॉर। बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के लिए परिश्रम करो। कैसे इंटेलेक्चुअल बनोगे? बहुत किताबें पढ़ो, बहुत सुनो, बहुत कुछ जानो, लैंग्वेजेस पढ़ो, लॉजिक पढ़ो, बहुत कुछ चीजें पढ़ो, पढ़ो करो, इन्वॉल्व रहो, रिसर्च करो, खोज करो। जब आप परिश्रम करते हो तो तभी आपकी प्रार्थना फलवती होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैन प्रेज फॉर विजडम, लेट हिम डू हिज अटमोस्ट टू अटेन इट। इन अदर वर्ड्स, प्रेयर शुड बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वन हैज स्ट्रेन्यूअसली एंडेवर टू अटेन इट। और जब आप अपने परिश्रम से उस सफलता को पाते हैं तो आप चिल्लाकर बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से मिली। सच बात है कि वो ईश्वर की कृपा से नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर आपको एक्स्ट्रा कुछ कृपा करने वाला नहीं है। वो उस इटर्नल रूल या रेगुलेशन को कभी कभी इग्नोर नहीं कर सकता चपलूसी के लिए। आप बने अपने परिश्रम से, पर वहां ईश्वर की भक्ति आपको मदद करती है, आपको मन को परिष्कृत करता है, प्यूरिफाई करता है, और आपको वो होप देता है, वो सपोर्ट मिलता है। ईश्वर नहीं सपोर्ट करता, आपकी भक्ति से आपके स्टेट ऑफ माइंड में वो इंफॉर्मेशन होता है जिसके कारण आप ताकतवर बनते हैं, और उसी से आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, आप मोक्ष पाना चाहते हैं, या संसार में आप बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, या ना जो भी आप जिस रास्ते में अभी जाना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो आपको वो सपोर्ट सिस्टम काम करता है। अगली बार हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे उपासना का कैसे करते हैं और उसका क्या फल है, और ओवरऑल ये जो ईश्वर की पूजा या भक्ति वो कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसमें ईश्वर का ईश्वर कुछ करता नहीं है उसके बावजूद भी, क्योंकि ईश्वर करने लगे तो फिर ऐसा तो पार्शियल ईश्वर होगा, बायस्ड होगा, पर हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है। हम अगले बार इसकी चर्चा करेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब आगे की